ॐ वैज्ञानिकमीरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीबुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायवनोखसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविश्रवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम् स्कंध चार श्लोक संख्या 71। शीर्षक है सीज द्वारा की गई स्तुति का गान। योगयादेशम उपासाद्य धारयन्तः मुनिव्रताः समाहिता धियः सर्वे एतत् अभ्यसता आदृताः। योगायादेशम् उपसाद्य योगादेशम् उपसाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः धारयन्तो मुनिव्रताः समाहिति धियः सर्व
समाहिद्धियः सर्व एतदभ्यासताद्रिताः योगादेशम् उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व एतदभ्यासताद्रिताः योगादेशम् उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व एतदभ्यासमादृताः।
भक्ति योग का यह आदेश उपासाद्य है, निरंतर पढ़ते हुए धारयन्त है तथा आत्मसात करते हुए मुनिव्रता है, मुनियों का व्रत मौन व्रत लो, समाहित मन में सदैव स्थिर एकाग्र भाव से, धिया है बुद्धि से, सर्वे तुम सब, एतत यह है, अभ्यसत अभ्यास करो, आद्रिता है अत्यंत आदर पूर्वक। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर्श हेत इसका पालन करो। पुनरावृत्ति करें। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। अनुवाद तात्पर्य। हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारणा, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन लगा करके अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है। हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान हैं कि इस युग में उन्हें कर पाना कठिन है, किंतु भक्ति योग की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए वरन अन्य युगों के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस योग पद्धति का उपदेश शिव जी द्वारा महाराज प्राचीन बृहस्पति के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति योग पद्धति कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते वो माम समेयुक्त तमो मतः। योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है और अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चालू है। इस प्रसंग में मुनि व्रत है शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ केवल कृष्ण कथा की बात करना या कृष्ण का गुणानुवाद करना है। यह मौन महाराज अम्बरीश जैसा है, सवई मन है कृष्ण पदार विंदयोर वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजा अम्बरीश ने राजा अम्बरीश ने सदैव भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हीं का गुणानुवाद किया। हमें चाहिए कि इस जीवन के अवसर को महान संत बनने में लगाएं और इसका उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने में न करें। हमें या तो कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, यह मुनिव्रत कहलाता है। बुद्धि को अत्यंत प्रखर होना चाहिए, समाहित ध्येय तथा कृष्ण भक्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए। एतदभ्यसताद्रिता है शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक उनका अभ्यास किया जाए तो यह भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसंग चल रहा है भगवान शिव जी के द्वारा की गई स्तुति का गान। प्रस्तुत श्लोक की पृष्ठभूमि यह है कि आप सभी श्रवण कर चुके हैं कि महाराज पृथु के सबसे बड़े पुत्र विश्वजीत हुए, जिनका दूसरा नाम अंतर्धान भी है। अंतर्धान का पुत्र हविर्धान हुआ और हविर्धान का पुत्र राजा प्राचीन बृहस्पति हुए और बृहस्पति राजा को राजा प्राचीन वरही भी कहा जाता है। इनके 10 पुत्र हुए जिन्हें प्रचेतागण कहा जाता है और 10 पुत्र एक समान थे, भक्ति भावना से युक्त थे। प्रचेतागण का अर्थ विद्वान करते हैं जिनका प्रकृष्ट रूपेण अर्थात पूर्ण रूप से चित्त भगवान में लगा हो, उसे प्रचेता गण कहा जाता है। तो जो 10 पुत्र प्रचेता गण थे, ये जन्म से ही भक्ति भावना से युक्त थे। जब राजा प्राचीन वरही इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किए तो उन्हें आदेश दिए, बेटा तुम सब अपने ही समान पुत्र उत्पन्न करो, संतानों की वृद्धि करो। तो संतानों की वृद्धि करने के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बरहिशक के ये दसों पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े, समुद्र की तरफ चल पड़े। तो समुद्र से जुड़ा हुआ एक खाड़ी थी जिसे सरोवर कहा जाता है, जलाशय कहा जाता है, वह भी खाड़ी समुद्र जैसे ही थी। तो उस खाड़ी में बहुत से कमल पुष्प खिले हुए थे, पुष्पों से वह सरोवर सुगंधित था। देवयोग से उसी सरोवर से भगवान शिव, जो महान वैष्णव हैं, अपने पार्षदों के साथ निकल करके बाहर आ रहे थे, और इधर से बृहस्पति के दसों पुत्र जा रहे थे। जब तट पर गए तो उधर से निकल रहे थे, तो दोनों ओर से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। तो शिव जी के चरणों में प्रचेतागण सष्टांग प्रणाम किए, प्रणाम करने से शिव जी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिए। शिव जी ने कहा, तुम लोग राजा प्रचीन बरही के दस पुत्र हो, तुम किस लिए यहाँ आए हो मुझे मालूम है, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दिए। शिव जी एक महान योगी हैं, महान वैष्णव हैं, और भगवान के जो बारह महाजन हैं, बारह महाजनों में स्वयंभू नारद शंभु ये तीसरे आचार्य कहे जाते हैं। ये भक्ति योग के आचार्य हैं, और शिव जी एक महान वैष्णव हैं और साथ ही साथ महान योगी भी हैं। शिव जी भी अष्टांग योग को जानते हैं, ये भी सिद्ध हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, जैसा रूप चाहे वैसा बना सकते हैं, सिद्धियों से ये युक्त हैं। शिव जी ने कहा, तुम लोग जिस उद्देश्य से यहां आए हो वो मुझे मालूम है, मैं तुम लोगों को भक्ति भावना से युक्त, भक्ति से युक्त दिव्य मंत्र देता हूं, और उस मंत्र से तुम्हें असीम शक्ति की प्राप्ति होगी, जिसे संतान उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ जीवन की अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होगी, परम संसिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात वैकुंठ भी मिल जाएगा। तो शिव जी ने बहुत से मंत्र बताए, तो शिव जी ने जिस मंत्र को बताया, जिस गीत को गाया, उसे हम रुद्र गीत के नाम से जानते हैं, और उसे हम अस्तोत्र कहते हैं। अस्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति, जिसमें भगवान के सौंदर्य का, रूप का, गुण का, महिमा का बखान किया गया है, उसे हम स्तोत्र कहते हैं। तो शिव जी ने जिस मंत्र को बताया उसे रुद्र गीत कहते हैं, और वह मंत्र भगवान कृष्ण की भक्ति से युक्त था, और उन मंत्रों में शिव जी ने, जिसको आप श्रवण कर चुके हैं, भगवान के सौंदर्य का, चरण कमलों का, दिव्य स्वरूप का, झांकियों का वर्णन किए हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, अर्थात शिव जी ने भक्ति योग का प्रचेता गुणों को मंत्र दिया। तो उसी को शिव जी इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है, और तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको, और तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तो शिव जी प्रस्तुत श्लोक में भक्ति योग अभ्यास का पालन करने को बता रहे हैं। एक बात पर आप अवश्य ध्यान दें, शिवजी भक्ति योग के आचार्य हैं और साथ साथ महान योगी भी हैं। आप नंदगांव में जाइए, वहां एक योगिया स्थल है, जिस स्थान को हम लोग वहां के ब्रजवासी शिव जी की बैठक के नाम से पुकारते हैं। शिव जी महान वैष्णव है, भगवान के महान भक्त हैं और हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं, भक्ति भावना से युक्त हैं। योगी तो बहुत हैं, हठ योगी हैं, ध्यान योगी हैं, बहुत से योगी का वर्णन है, लेकिन ये भक्ति योगी हैं। जब जब भगवान का आविर्भाव होता है, चाहे ब्रज में हो चाहे अयोध्या में हो, जहां भी भगवान का अवतार होता है वहां पर ये भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, ललायित हो जाते हैं और जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव जी नंदगांव में ललायित थे, योगिया स्थल। ये योगी हैं, योगी का अर्थ होता है जो अपने मन को भगवान कृष्ण से जोड़ दें, उसे योगी कहा जाता है। योग माने जोड़ना, जिनके मन का लगाव भक्ति योग से युक्त हो, कृष्ण भावना से युक्त हो, वो महान योगी हैं। तो उन योगियों में से शिवजी महान योगी हैं जो भक्ति योग का पुनः उपदेश दे रहे हैं। तो शिवजी भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित थे और नंद भवन में गए, यशोदा मैया के भवन में गए। जब गए और कहे, वहां अलख निरंजन, ये योगियों की एक भाषा है, अलख मतलब जिसे लखा ना जा सके, और निरंजन का अर्थ होता है जिसमें कोई भौतिक दोष न हो, दोषों से रहित, उन्हें निरंजन कहा जाता है। तो भगवान दोषों से रहित हैं, भगवान को कोई लग सकता है तो भक्ति से लग सकता है, बिना भक्ति के माध्यम से कोई उन्हें परख नहीं सकता है। तो योगी इसी भाषा में बोलते, अलख निरंजन। तो भगवान का कीर्तन करते हुए, डमरू बजाते हुए शिव जी जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दर्शन करने के लिए लायक है, उधर से मैया खबर विदा करा देती, मेरा लाल अभी सोया हुआ है, अभी दर्शन नहीं होगा। शिव जी चले जाते, फिर आते, फिर अलग निरंजन भगवान का नाम बोलते, पुनः मैया बहाना कर देती, मेरा लाल अभी दूध पी रहा है, खबर दिलवा दे, दर्शन नहीं कराना चाहती थी। क्यों? यशोदा मैया के अंदर ये भावना थी कि ये योगी हैं, इनका अमंगल स्वरूप है, इनके स्वरूप को देखकर मेरा लाल डर जाएगा, नजर लग जाएगी तो मेरा लाल अस्वस्थ हो जाएगा, इसलिए वह दर्शन कराना नहीं चाहती थी। ये महान योगी भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित हैं, मैया कुछ ना कुछ बहाना बना देती। अंतोगत्वा शिव जी ने देखा कि ये दर्शन नहीं कराएगी, तब शिव जी ने दरवाजे पर ही अलख जगाया, भगवान डमरू बजाने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको अलख जगाना कहते हैं, भक्ति से युक्त कीर्तन करने की विधि का नाम है अलख जगाना। शिव जी डमरू बजाने लगे, अलख जगाने लगे, तो लाला रोने लगा। लाला ने देख लिया कि मैया मेरा दर्शन नहीं कराएगी, योगी बाबा का दर्शन नहीं कराएगी, तो कृष्ण रोने लगे। जैसे जैसे शिव जी डमरू बजाते हैं, वैसे वैसे लाला रुदन को बढ़ाते जाते और भी जोर से रोते। तो मैया व्याकुल हो गई कि मेरा लाल क्यों रो रहा है। तो यशोदा मैया की उम्र के जो अन्य गोपियां थी, उन गोपियों ने कहा, अरे यशोदा देखो, ये जो योगी बाबा आए हैं ना, वो डमरू बजा रहे हैं, उनकी डमरू को सुनकर ये रो रहा है, तुम उनका दर्शन करा दो, अगर उनका दर्शन कर लेगा तो हो सकता है ये चुप हो जाए, इसी के लिए वो रो रहा है। यशोदा मैया ने बात को वृद्धा गोपी की बात को स्वीकार कर ली और कहा कि जाओ जोगीराज को बुला लाओ। एक गोपी जाती है और जोगीराज से कहती है, शिव जी से कहती है कि चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तो ही बुलावे, लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आयो योगी, राय नोन कर लिन्हो, बार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पर दिन्हो। विथा भई अब दूर बदन की, विथा भई अब दूर बदन की, किलक उठे नंदलाल, खुशी भई नंदजू की रानी, बिन मुतियन की माल। रहुरे जोगी नंद भवन में, ब्रज को वासो कीजो, जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। गोपी आकर कहती हैं, हे जोगीराज, आप नंद भवन में पधारे हैं, आपको जसोदा जी बुला रहे हैं, आप चलें। इतना सुनते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। लटकत लटकत शंकर आवे, शिव जी नृत्य करते हुए, एकदम नाचते हुए, भक्ति भावना से युक्त होकर कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आनंद में विह्वल होकर, पागल होकर के बिल्कुल नंद भवन में पधारे। तो शिव जी योगी हैं तो हाथ में नमक और तोरी राय लिए हुए थे। नमक और तोरी की ऐसी महिमा है कि उसके माध्यम से अगर हम किसी के सिर के ऊपर फेरते हैं, आचमन करते हैं, तो बच्चे का जीवन मंगलमय होता है। या कोई जादू टोना भी हो तो वो उतर जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, नजर नहीं लग सकता है। तो शिव जी नमक और राय लिए हुए थे। योगी हैं, जो संकल्प किए जिस वस्तु की, वो वस्तु हाथों में आ गई, सिद्ध है। तो नंद भवन में आयो योगी, जब नंद भवन में गए तो राय नोन कर लीनो, नमक और तोरी लिए हुए थे और गए लाला, बार फेर लाला के ऊपर अपने कर कमलों को, लाला के बाल को ऐसे सहलाए, सिर पर रखे, अपने हस्त कमल को सिर पर रखे, बार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पर दिनो। ये सब प्रेम के लक्षण है, सहलाए है शिव जी, आशीर्वाद दिए हैं, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव से मंगल की कामना की है। और बिथा भई अब दूर बदन की, जब ही हाथ को ऐसे फेरे, जो लाला रो रहा था वो लाला बिल्कुल रोना बंद कर दिया, और किलक के उठे नंदलाल, और ठठा करके किलकाली मार करके बाल कृष्ण हंस पड़े। तो यह देख करके मैया बहुत प्रसन्न हो गई कि जोगी राज का दर्शन करके मेरा लाल प्रसन्न हो गया, इसको जो पीड़ा थी, इसको जो दर्द था, वह दर्द दूर हो गया। तो मैया प्रसन्न होकर के मोतियों की माला, मोती की माला शिव जी को प्रदान की खुशी में, और शिव जी से निवेदन किया, कहा मैया ने कि रहुरे जोगी नंद भवन में, हे जोगी राज, आप इसी नंद भवन में रहिए, ब्रज को वासो कीजो, और ब्रज में वास कीजिए, जब जब मेरे लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। जब जब मेरा लाला लाल रोया करेगा, तब तब आकर के आप दर्शन दिया कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, शिव जी महान योगी हैं, भक्ति भावना से युक्त हैं, भगवान के दर्शन के लिए ललायत हैं, और दर्शन करके शिव जी प्रसन्न हो गए, और भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। तो शिव जी भक्ति योगी हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारणा, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। बहुत से ऐसे योगी होते हैं, हठ योगी, जो खड़े रहते हैं। कुछ तो ऐसे योगी हैं सविशेषवादी हैं, और कुछ निर्विशेषवादी हैं, दोनों अध्यात्मवादी हैं, वो भी अष्टांग योग करते हैं, लेकिन वे लोग प्रकाश का चिंतन करते हैं, जीरो का चिंतन करते हैं, शून्य का चिंतन करते हैं। तो शून्य के चिंतन में क्या मिलेगा? ओम ऐसे बोलते हैं, तो ओम भगवान का निर्विशेष रूप है, उसमें बांसुरी वाले की छल छवि नहीं झलकेगी, उसमें मुरली वाले की याद नहीं आएगी। ओम जो कृष्ण कहेंगे तो बिल्कुल मुरली वाले के, मोर मुकुट वाले की याद आएगी, पीताम्बरधारी की याद आएगी, लेकिन ओम में, ओम कहने से भगवान का स्वरूप नहीं झलकता है। ओम गौण शब्द है, कृष्ण से गौण शब्द है ओम, क्योंकि इसमें वास्तविक स्वरूप नहीं झलकता है। ओम और क्लीम में भी वैदिक मंत्र हैं, इनसे मंत्र की प्रणति होती है। तो बहुत से ऐसे योगी हैं जो केवल शून्य का ध्यान करते हैं। तो हठ योगी जो हठ पूर्वक खड़े रहते हैं, उनके पांव सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, केवल प्रकाश का चिंतन करते हैं। और ये जो योगी हैं, जैसे आजकल अन्यत्र देखिए योगाभ्यास केंद्र खोल करके लोग सिखा रहे हैं, प्रकाश का ध्यान करो। अरे प्रकाश का क्यों कहते हो? क्यों नहीं जैसे शिव जी बता रहे हैं भगवान के चरणों का ध्यान करो, नारद जी ने ध्रुव जी को अष्टांग योग बताया है, भगवान के चरणों का ध्यान करो, चरणों से ध्यान शुरू करें। भगवान के चरण मोनिश चिन्ह है, उन चिन्हों का तो ध्यान करो, स्वस्तिक है, कमल है ना, बहुत से हैं, उन चिन्हों को स्मरण करें। ध्यान करने की ये विधि है। तो शिव जी ये वास्तविक योगी हैं। आज जो योग पद्धति सिखला रहे हैं, जैसे मान लीजिए जगह जगह केंद्र खोल करके, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे ये क्या है ये रामदेव महाराज हों, ये लोग प्रकाश पर जोर देते हैं। लेकिन देखिए ये ऐसे योगी हैं, नारद जी और शिव जी ऐसे योगी हैं जो भगवान के स्वरूप पर बल देते हैं। ध्यान करना है तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, चिंतन करें। ऐसे भी आप योगासन करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, है ना, हाथ को ऐसे छोड़ते हैं तो बोलिए हरे कृष्ण, ऐसे भी लाभ होगा। ये भी मतलब ये कृष्ण ये भक्ति भावना से युक्त विधि है। हरे कृष्ण देखिए भगवान का स्मरण होगा तो कृष्ण भावना से युक्त। ये जो योगी है शिव जी महान योगी है। और योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है? मन को तो जोड़ना ही है भगवान से, लेकिन किस प्रकार से जोड़ना है? साक्षात स्वरूप का चिंतन करते हुए जोड़ना है, जीरो पर केंद्रित करके नहीं जोड़ना है। भगवान देते हैं कि कौन योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, गीता के छठे अध्याय में आप देखिए, अंत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरा मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है। और उन योगियों में शिव जी महान योगी हैं, नारद जी महान योगी हैं। और यही योग पद्धति की विधि को बतलाए हैं, भगवान का नाम रूप गुण सौंदर्य का बखान किए हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। शिव जी इस प्रकार से भक्ति योग का वर्णन किए, कहने का भाव यह है कि योग यहां मतलब भक्ति योग से है। योग करने से शरीर ठीक रहता है, लेकिन याद रखें जितने भी योग लोग करते हैं उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। शरीर तो स्वस्थ होता ही है, लेकिन शरीर स्वस्थ रख करके वो क्या करते हैं? भोग करते हैं, भोग में उनको बल मिलता है। बहुत से योगासन करते हैं, जैसे तितलासन करेंगे तो तितलासन करने से जननेन्द्रियों में शक्ति आएगी, तो उनको भोग करने में सुविधा होगी। तो योगासन करके अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और उसे विषय भोग करते हैं, कृष्ण भक्ति योग में नहीं लगाते हैं। अगर लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो योग में तो शक्ति है, जो योगी हैं योग करने से इंद्रियां बिल्कुल सही दिशा में काम करती हैं और चक्र जागृत हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के चक्र हैं। लेकिन भक्ति योग को अपनाना चाहिए। शिव जी ने जिस योग पद्धति को बताया है, नारद जी ने जिस योग पद्धति को बताया है, उस पद्धति के अनुसार हम सभी वैष्णवों को चलना चाहिए। तो इन इन सब योगियों में प्रभुपाद जी महाराज अम्बरीश का नाम लेते हैं। जैसे श्लोक देखिए, योगादेशम उपासाद्य, भक्ति योग का यह आदेश, शिव जी ने उन लोगों को आदेश दिया। धारयन्तो मुनिव्रता, निरंतर पढ़ते हुए जिस स्तुति को शिव जी ने बताया, क्योंकि इस स्तुति को जिसमें भगवान के सौंदर्य का रूप का गुण का बखान किया गया है, इसको धारण करो, चिंतन करो और मन में सदैव एकाग्र भाव से स्थिर रखो, एकाग्र होकर केंद्रित करना चाहिए। एकाग्र करने से शक्ति आती है। जैसे शीशा है, एक शीशा होता है नत्तोदर क्या बोलते हैं दर्पण, है ना, वो शीशा को सूर्य के प्रकाश में रखिए तो वो प्रकाश को केंद्रित करता है, एकत्रित करता है। तो एकत्रित करने से उसमें शक्ति आ जाती है, वो किसी भी वस्तु को वो जला डालेगी। शक्ति आने से कोई वस्तु जल जाएगी। तो मन को एकाग्र करने से उसमें शक्ति आती है। यदि हम मन को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करेंगे तो मन कृष्ण में लीन हो जाएगी, आध्यात्मिक पद्धति में माने भक्ति योग में हम विकास करेंगे। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया है। और मन एकाग्र कैसे होगा? अभ्यास और वैराग से। अभ्यास न तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। तो ऐसे योगियों में प्रभुपाद जी बखान करते हैं। यहां पर महाराज अम्बरीश का नाम लेते हैं। महाराज अम्बरीश एक महान योगी थे। देखिए गृहस्थ आश्रम में भी योगी होते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम में भी योगी होते हैं। योगी हैं, शिव जी गृहस्थ हैं लेकिन ये महान योगी हैं। नारद जी ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं। अम्बरीश महाराज देखिए गृहस्थ हैं, ये भी योगी हैं, भक्ति योगी हैं। और अम्बरीश महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद में आती है। अम्बरीश महाराज जी ऐसे योगी थे कि इनके योग पद्धति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने इनकी सुरक्षा के लिए चक्र सुदर्शन को प्रदान किया था। तो महाराज अम्बरीश, अम्बरीश का अर्थ विद्वान करते हैं अम्ब माने परम ब्रह्म और ऋष माने इच्छा किया। जिसकी परम ब्रह्म में मति लगी रहती है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सदैव ललायत रहते हैं, उसे या उन्हें अम्बरीश कहा जाता है। यह है अम्बरीश महाराज जिनकी मति परम ब्रह्म में थी। प्रभुपाद जी कोट किए हैं इसमें और कहते हैं महाराज अम्बरीश जी की मति देखिए, उनकी मति सदैव भगवान के चरणों में लगी रहती थी। कैसे? सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जिनाद्युषु श्रोतिं चकाराचुत सत्कथोदये मुकुंदलिंगा लय दर्शनि दृशौ तदभेत गात्र अस्पृशेयंग संगमं ग्राणं च तत् पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयरति यथोत्तम श्लोक जनाश्रयरति। तो महाराज ऐसे, महाराज अम्बरीश ऐसे योगी थे जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिए थे। महाराज अम्बरीश एक चक्रवर्ती सम्राट थे और इन्हीं के समय में अयाति महाराज भी राजा थे, जिनसे भगवान की महिमा को सुन करके अयाति महाराज भक्त बने थे। तो महाराज अम्बरीश ऐसे भगवत भक्त थे, ऐसे योगी थे जो भौतिक ऐश्वर्य को नश्वर समझते थे, पत्थर के टुकड़े के सदृश समझते थे। जैसे पत्थर का टुकड़ा कहीं भी पड़ा हो तो उसको लेने के लिए किसी को लोभ जागृत नहीं होगी। तो धन के प्रति इनका आकर्षण नहीं था। इनका आकर्षण जो सबसे धनियों को भी धनी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो स्वर्गों से बिल्कुल विभूषित हैं, उनको प्राप्त करने की दृष्टि थी, उनका मन उनमें संलग्न था। तो महाराज अम्बरीश ईश्वर को, भौतिक ईश्वर को नश्वर मानते थे और अपने मन को ये भगवान के चरणों में लगा दिए थे। ध्यान से सुनिए, मन मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन मन है और मन को जो बस में कर लिया, समझिए कि मन उसका मित्र हो गया। अगर बस में नहीं किया तो उसका शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र। गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं वो मनुष्य का मन है, यही बंधन का और मोक्ष का कारण है। यदि भगवान में लग गया तो आपकी मुक्ति हो गई, संसार में लग गया तो बंधन हो गया। तो कैसे लगेगा अभ्यास से, तो देखिए महाराज अम्बरीश अपने मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाए। सवई मन है कृष्ण पदारविंदो, पदार पदा अरविंदो, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाए। वंचांश वैकुंठ गुणानुवर्णन, और अपने वाणी को अपने जिह्वा को भगवान का गुणानुवाद करने में लगाए। करो हरिर मंदिर मार्जनाद से, और अपने हाथों से वे मंदिर का मार्जन करते, भगवान का श्रृंगार करते। श्रुतिम चकारा अच्युत कथोदय, और कानों से भगवान की कथा को श्रवण करते। और मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, और नेत्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते। और तत्वृत्त गात्र स्पर्श अंग संगमम, और अपने और भक्तों के चरणों को स्पर्श करते, भगवान के अंगों को स्पर्श करते। घ्राणम च तत् पाद सरोज सौरभ, भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी जैसी अपने कमल पुष्पों को, तुलसी जैसी दिव्य पत्र को वो ग्रहण करते। नासिका से उनका सुगंध लेते, और जिह्वा से अर्पित तुलसी को ग्रहण करते। पादों हरे क्षेत्र पदानुसर्पण, और पांवों से चल करके वे मंदिर में जाते, तीर्थ स्थानों पर जाते, भगवान का दर्शन करते। और शिरो हृषि के सब पदाभिवंदन, और शिर से भगवान को सष्टांग प्रणाम करते। कामम च दास्ये न तु काम काम्या अथो तम श्लोक अजनाश्रयारति, और अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिए थे। भगवान जो चाहते थे उनके इच्छा के अनुकूल महाराज अम्बरीश कार्य करते थे। यह है भक्ति। इसलिए भगवान ने गीता में जोर देकर कहा है, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, एक ही श्लोक को दो बार, मन मनाभव मद भक्तो। मन मनाभव, मुझ में मन वाला हो। मुझ में मन वाला हो का मतलब है कि हमें भगवान के इच्छा के अनुकूल कार्य करना है, अपने मन के अनुकूल नहीं। भगवान क्या चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुकूल, उनको प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए उसको मन मनाव कहते हैं, मन मनाभाव। तो महाराज अम्बरीश भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार वो भक्ति भावना से युक्त थे, सबसे बड़े जोगी। और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने चक्र सुदर्शन रख दिया था। और इनकी महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने एक चाल खेला, एक ट्रिक किया, क्या कि दुर्वासा मुनि को इनके पास विदा किया। देखिए भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान की माया बहुत प्रबल है, किसको किस रूप में क्या कर देगी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्तों की महिमा बढ़े। दुर्वासा जी भी जोगी हैं, और यह अम्बरीश महाराज भी जोगी हैं, वो क्रोधी जोगी हैं, अब बिल्कुल ये शांत योगी हैं। इनके अंदर किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा द्वेष की भावना आ जाती है, क्रोध की भावना आ जाती है। तो महाराज अम्बरीश भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत किए, वृंदावन मधुबन में वहां तपस्या किए, साल भर व्रत किए। और उनके व्रत से देखिए भगवान प्रसन्न हो गए। व्रत पूरा हुआ और जब पारण करने का समय आया तो महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों से अनुमति लिए कि किस समय पारण किया जाए, तो ब्राह्मण उनको बताया कि पारण किया जाए। जब पारण करने का समय आया तो इनसे पहले ही व्रत पूरा होने पर ही दुर्वासा जी उनके पास पहुंचे, मधुबन में वृंदावन में पहुंचे। और पहुंचे तो अम्बरीश महाराज स्वागत किए। गृहस्थ का एक धर्म होता है, उनके आश्रम में उनके घर पर कोई भी महात्मा आए, वैष्णव आए, ब्राह्मण आए, तो उनका वे स्वागत करें, स्वागत किए। इसके बाद कि आप पधारें, भोजन करें, तो महाराज अम्बरीश स्नान करने के लिए चले गए। स्नान की यमुना जी में, और इधर इनका पारण का समय अब बीतने लगा। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से राय लिया, ये भी प्रवीण और बताइए पारण करने का समय हो गया है, अगर पारण हम नहीं करते हैं समय से तो फिर व्रत का फल नहीं मिलेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के इच्छा अनुसार, माने राय के अनुसार, महाराज अम्बरीश जल का पान कर लिए। जल एक ऐसा तत्व है जिसे भोजन करने में भी गिना जाता है। बंगाली भाषा में लोग बोलते हैं जल खावेन, जल खाओगे, ऐसे कहते हैं। तो जल का यदि हम पारण कर लेते हैं समय से तो आपका व्रत ब्रेक हो जाता है, सुना? तो वैसा करने से आपको व्रत करने का पूरा पूरा फल मिल जाता है। तो महाराज अम्बरीश ने वही किया, जल का पारण किया। और दुर्वासा जी की समय हो गया, प्रतीक्षा करने लगे। तब तक दुर्वासा जी जान गए, वो जोगी थे, वो भी जान गए कि तो महाराज अम्बरीश जल का पान कर लिए। तो वे जान गए कि ये मुझे, मैं इसके दरवाजे पर आया अतिथि बनकर और बिना मुझे खिलाए ये पहले पारण कर लिया। एक बात ध्यान देने की बात है, गृहस्थ का यह धर्म बनता है उसके दरवाजे पर यदि वैष्णव आए तो पहले वो भोजन न करें, पहले जो ही ब्राह्मण साधु आए हैं, महात्मा आए हैं, उनको खिला करके तब अंत में वो पारण करें। एक्चुअली महाराज अम्बरीश ने भी वैसा ही किया, केवल जल का पारण किया व्रत की रक्षा के लिए, भोजन नहीं किया और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा, इसके बाद महाराज अम्बरीश दुर्वासा जोगी आए और वे वहीं से देख लिए, क्योंकि वो भी योग शक्ति से परिपूर्ण थे, देख लिए को मुझे बिना पारण कराए और ये पारण कर लिया, इतना इसको घमंड है, राजा होकर के इतना गर्वित हो गया है, इसके घमंड को मैं चकनाचूर कर डालूंगा। और वे अपना योग शक्ति को दिखलाए आकर के आए और महाराज अम्बरीश पर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहे तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे अभी भस्म कर डालूंगा। तो मंत्र पढ़ करके अपनी जटा उखाड़े और जटा उखाड़कर धरती पर पटक दिए और उसे कृत्या नाम का राक्षस उत्पन्नी और उसको आदेश दिए जाओ इसको जला दो। वो जलाने के लिए चली, तब तक भगवान तो जानते ही थे कि आगे क्या होने वाला है, चक्र सुदर्शन चल पड़ा और चक्र सुदर्शन उसकी तरफ दौड़ा, दौड़ करके उसको चक्र सुदर्शन चला और उस कृत्या नाम के राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। इसके बाद वो चक्र दुर्वासा मुनि की तरफ चला। अब दुर्वासा जी वहां से भागे। देखिए दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये तो भक्ति योगी है, हालांकि दुर्वासा जी भी योगी है, लेकिन यहां अम्बरीश महाराज का जो योग है, भक्ति योग, ये उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है। वो भी योगी है, वो भी शक्ति उनके पास भी है, लेकिन अपनी शक्ति से वो बच नहीं पाए, क्योंकि वो ये भगवान के शरणागत हैं और उनको अपना अहंकार है, एक वैष्णव को जलाना चाहते हैं। देखिए दुर्वासा मुनि एक वैष्णव को जलाना चाहते हैं, वैष्णव अपराध कर दिए, तो वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक होता है, वैष्णव अपराध से हम सभी को बचना चाहिए। छह प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, जैसे किसी वैष्णव पर प्रहार करना, किसी वैष्णव पर हाथ छोड़ना, ये वैष्णव अपराध है, और किसी वैष्णव की निंदा करना, दूसरा है उनसे द्वेष करना, तीसरा है उनका अनादर करना, चौथा है उनका अनादर करना, और पांचवा है वैष्णव पर क्रोध करना, और छठा है वैष्णव का दर्शन करके भी हर्ष प्रकट न करना, माने प्रसन्न न होना। तो महाराज अम्बरीश महान वैष्णव, ऐसे वैष्णव का दर्शन करके भी दुर्वासा मुनि प्रसन्न नहीं हुए और जलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, इनसे वैष्णव अपराध हो गया। और वैष्णव अपराध की यह विशेषता है, वह अपराध वैष्णव से ही दूर होगा। जैसे भगवान के साथ कोई अपराध करता है तो भगवान के शरण में जाने से दूर होगा, लेकिन वैष्णव अपराध कोई करेगा तो वैष्णव के शरण में जाने से दूर होगा, भगवान भी उसको दूर नहीं कर सकते, इतना भगवान अपने भक्त को मानते हैं। चक्र पीछा किया, तीनों लोक में दुर्वासा मुनि घूमते रहे, माने भ्रमण दौड़ते रहे, साल भर दौड़ते रहे, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई रक्षा नहीं किया। अंत में नारद जी की कथना अनुसार वे भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि भक्त हमारे हृदय होते हैं, अहम भक्त अपराधिनो हे स्वतंत्र इव दिव्य साधुर्भिग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्ति जनः प्रियः, मैं अपने भक्तों के बस में रहता हूं और मैं भक्तों से तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, मुझे मेरे भक्त ही नहीं मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं, साध वो हृदय में है, हम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यत ते न जानती ना हम तेभ्यो मनागति, शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूं, मेरे भक्त मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को कुछ नहीं जानता, इसलिए आप हमारे भक्त अम्बरीश महाराज की शरण में जाएं। तब दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के शरण में आए और अम्बरीश महाराज फिर चक्र सुदर्शन से प्रार्थना किए तो चक्र सुदर्शन उनकी प्रार्थना सुनकर के शांत हो गया, तब दुर्वासा जी की जान बची, झुलस गए थे, उनके शरीर में फोड़े पड़ गए थे। और इसके बाद महाराज अम्बरीश तो प्रतीक्षा में थे कब आए और प्रसाद पाए और बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन पाए और महाराज अम्बरीश का गुणगान गाते हुए फिर दुर्वासा जी अपने लोग को चले गए, ब्रह्म लोग को चले गए। तो कहने का भाव यह है कि महाराज अम्बरीश एक महान योगी हैं और अपने किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किए, एकादशी व्रत करके। अगर भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो वैष्णव को एकादशी व्रत
अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से भक्ति में शक्ति मिलती है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर कोई ज्यादा नाम जप करता है तो उसकी मनोवांछा पूर्ण होती है। तो भक्ति योग में प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें महाराज अम्बरीश के जीवन चरित्र के आदर्श को अपनाना चाहिए। तो इस श्लोक का यही भाव रहा। जैसे इसमें एक और शब्द है मुनिव्रता है। मुनिव्रता जो शब्द है मौन व्रत होकर के, मतलब केवल कृष्ण कथा की बात करना, कृष्ण का गुणानुवाद करना, माने कृष्ण की चर्चा छोड़ करके जगत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मौन है। मौन का अर्थ प्रभुपाद ये नहीं बताते हैं कि कल चुपचाप रहें और कथा न कहें, कथा न सुने, नाम जप न करें, ऐसी बात नहीं। भगवान का नाम जप करें लेकिन जगत का चिंतन न करें, जगत की चर्चा न करें और जगत की चर्चा को छोड़ करके भगवान की चर्चा करें, कथा कहें, ये है वास्तविक मौन। तो शिव जी भी महान वैष्णव हैं, वो भी कथा सुनाते रहते हैं और प्रचेता गणों को भी वे कथा श्रवण कराए। और महाराज अम्बरीश को प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जो सबसे बड़े महान भक्त हैं। महाराज अम्बरीश अपनी धर्म पत्नी के साथ एकादशी व्रत करके भगवान को प्रसन्न किए और अंत में वे भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो प्रस्तुत श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए और भक्ति योग के माध्यम से सदैव अपने मन को कृष्ण के चरणों में रखें। अब अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से एक दिन ऐसा अवसर आता है कि मन वश में हो जाता है, भगवान को पकड़ लेता है और यह जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो अल्प समय में कर सकते हैं। बोलिए जुगल किशोर जी, आपकी तो जिज्ञासा बनी रहती है। जी जी
भगवान शिव जी जो है रुद्र स्वरूप में प्रकट हुए।
किस स्वरूप में?
रुद्र स्वरूप, रुद्र।
हाँ, हाँ।
जैसे ब्रह्मा जी वो मुझे मालूम है, बाकी शिव जी का ये सुना है कि शिव जी कैसे आए।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप गीता को पढ़िए, गीता का 10वां अध्याय, उसमें जो श्लोक है तेसाम सतत युक्ता नाम, नहीं एक श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो उस श्लोक की व्याख्या में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि शिव जी की कैसे उत्पत्ति हुई। और दूसरी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के वाम भाग से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का 3रा अध्याय शुरू में ही है, आप पढ़ सकते हैं। शिव जी की उत्पत्ति भगवान से है, ऐसा वर्णन आता है। तो शिव जी कोई स्वतंत्र अलग से ईश्वर नहीं है। और रुद्र जो है, जैसे चारों कुमारों को जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और सृष्टि करने का आदेश दिया तो सृष्टि करने की विधि को नहीं अपनाए, प्रवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाए, निवृत्ति मार्ग को अपनाए, संन्यास धर्म को अपनाए। तो इस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, कहे कि ये मेरे आदेश को नहीं माने। तो क्रोधित होकर के समझे ना, क्रोध किए, तो उनके क्रोध से रुद्र 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई भौवे से। तो वो नाम दिए उनको रुद्र, रुद्र बोलते हैं। तो रुद्र शिव जी का स्वरूप है। ऐसे शिव जी भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं। भगवान के शिव जी दास हैं, महान वैष्णव हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं और उन्हीं का नाम जप करते रहते हैं, उन्हीं की भक्ति करते रहते हैं। हरे कृष्ण। और कोई? गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।